मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों कल हम लोग विचार और विचार का जो प्रभाव हमारे दिन भर पर पड़ता है उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। आपको याद होगा कि मैंने आप सबको अपना एक अनुभव बताया था कि जब कल अखबार नहीं आए और मैंने दूसरे न्यूज़ से भी अपने आप को बिल्कुल अलग रखा तो मेरा जो समय था वो अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर तरीके से बीता। अब मेरी इस बात को आप इस रूप में भी ले सकते हैं, तो क्या हमें अखबार नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हमें न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए? तो क्या हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है हमें उन सब से अपनी आंखें बंद करके, दिमाग को बंद करके और अपने आप में ही मस्त रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके? फ्रेंड्स, यह एक अलग किस्म का विषय है, एक अलग किस्म का विषय। तो उस विषय को मैं यहाँ नहीं उठाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही एकेडमिक डिस्कशन की मांग करता है। लेकिन इससे ही जुड़ी हुई जो दूसरी बातें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि हम सब समझ सकते हैं, समझ करके उसका उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके थोड़ा से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनके बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर हम अपने दिमाग की बात करें या अपने मनोविज्ञान की बात करें तो व्यावहारिक स्तर पर हमारे पास दो अवयव हैं। अवयव में जानबूझ करके कह रहा हूँ, या कह लीजिए कि दो अंग हैं। एक है हमारा मस्तिष्क और दूसरा है हमारा हृदय, या यूं कह लीजिए मन। अब पता नहीं मन अवयव है या नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी बात को समझने के लिए या मैं अपनी बात आपको समझा सकूं इसके लिए आप मुझे इसकी अनुमति दें कि दूसरा है मन। जो मस्तिष्क है हमारा, तो मस्तिष्क में विचार उठते हैं। इस अंतर को थोड़ा सा समझिएगा। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और सामान्यतया यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे के अंदर लगभग 60,000 विचार उठते हैं। 60,000 लगभग। देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में कोई एक पंक्ति आती है तो वो विचार ही कहलाएंगे। मतलब विचार का मतलब यह मत समझिए कि कोई बहुत ही थॉटफुल बात कही जा रही है, नॉट एट ऑल। आपके दिमाग ने कुछ सोचा, वो विचार बन गया। और जो हमारा मन है वहां इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, डिजायर पैदा होते हैं। हमें इच्छाओं और विचार इन दोनों को बिल्कुल एक मानकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि दोनों के जो उत्पादन स्थल हैं वो अलग अलग हैं। ये बात अलग है कि जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई विचार आए और उस विचार के बाद मेरे अंदर कोई इच्छा पैदा हो जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं अपने पड़ोस में जाता हूं और पड़ोस में जाकर के देखता हूं कि उनके यहाँ बहुत अच्छे किस्म का सोफा लगा हुआ है और मेरे यहाँ सामान्य किस्म की कुर्सियां बिछी हुई हैं। तो उस सोफा को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि यार ये सोफा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, अगर मैं इस रूप में सोच रहा हूं तो ये विचार है। और लेकिन जैसे ही ये विचार आता है और इसके बाद फिर मेरा वह विचार मुझे ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि यार ऐसा सोफा मेरे पास भी होना चाहिए। अब ये इच्छा हो गई। आप देख रहे हैं कि कैसे उस विचार के कारण इच्छा यहां पैदा हुई। और वो विचार क्यों आया? क्योंकि विचार करने का मैंने एक अवसर उपलब्ध कराया अपने मस्तिष्क को। अगर मैं अपने पड़ोसी के ड्राइंग रूम में नहीं जाता तो मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आता, और अगर ये विचार नहीं आता तो मेरे मन में यह इच्छा भी पैदा नहीं होती। तो सामान्यतया ये मान लीजिए कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे विचार को फॉलो करती हैं, उनका अनुगमन करती हैं। दिमाग में चाहे हल्का सा ही आए या बिजली की तरह कौंध करके वो फिर गायब हो जाए, कोई ना कोई एक विचार आ जाता है और इसके बाद फिर वही विचार इच्छा को जन्म देकर गायब हो जाता है। और ये जो इच्छा है ये हमारे मन में आती है, यानी कि ये कह लीजिए कि अब वह मस्तिष्क से मन में उतर गया है। यहां खासकर मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो केवल एक सिंपल सी बात है और वह यह फ्रेंड्स कि याद रखिए कि विचारों पर नियंत्रण करना आसान होता है, बहुत आसान होता है। चलिए, बहुत आसान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपेक्षाकृत आसान होता है। अपेक्षाकृत का मतलब यहां अपेक्षा किससे? हृदय से, मन से। इच्छाओं पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। आप यूं कह लीजिए कि उसके लिए तो बिल्कुल एक प्रकार से साधना करनी पड़ती है। जो हम साधु संत फकीर ये सब जो कहते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये अपने इच्छाओं को बिल्कुल जीत चुके होते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण पा चुके होते हैं बिना विचारों के। विचारों पर इन्हें नियंत्रण पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने अपने मस्तिष्क को इस रूप में साध लिया है कि वहां इस तरह के विचारों के जन्म लेने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती, या यूं कह लीजिए कि संभावना ही नहीं रह जाती, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने अपने मस्तिष्क को खासकर इस तरह के विचारों के लिए एक बंजर जमीन में तब्दील कर दिया है। उसमें ये विचार पैदा ही नहीं होते, तो पैदा ही नहीं होते तो इच्छाएं भी नहीं आती, और जब इच्छाएं भी नहीं आती तो बात खत्म हो गई। लेकिन ये बहुत कठिन काम है। यहां जो मैं बात विशेष रूप से अंडरलाइन करना चाहूंगा वो ये कि यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, आप अगर अपनी इच्छाओं से परेशान हैं, तो इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। आप अपने विचारों पर काम कीजिए कि आपको जो विचार मिल रहे हैं, पहले तो देखिए कि वो कहां से मिल रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि लोगों की जब बातचीत सुनते हैं तो कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि वो इच्छाएं पैदा कर देते हैं, और वो फिर इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। यहां मैं जो बात कर रहा हूं केवल उन विचारों और इच्छाओं के बारे में कर रहा हूं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको सुख पहुंचाते हैं उनके बारे में नहीं। तो स्वाभाविक है कि आपको फिर ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे दृश्यों से, ऐसे वातावरण से, ऐसे माहौल से। आपके विचार बिल्कुल उद्विग्न हो जाते हैं जो इच्छाओं को जन्म देते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप अपने आप को ऐसे माहौल से बचाने की कोशिश कीजिए, ऐसे दृश्यों से मत जुड़िए, ऐसे वातावरण में मत रहिए। ये तो देखिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि उस वातावरण में रहते हैं लेकिन अपने विचारों पर उनका इतना जबरदस्त नियंत्रण होता है कि बिल्कुल कोई भी इच्छा उनके अंदर इस विचार से जुड़ी हुई पैदा होती ही नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं और इसके लिए भी साधना की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई साधु संत है और किसी बहुत बड़े महल में जाता है और वहां की शान शौकत देखता है, तो ये शान शौकत देख करके वो उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, या उसके मन में ये इच्छा पैदा नहीं होती कि अरे मेरे पास भी इतना बड़ा महल होता, अरे मेरे भी जमीन पर कालीन बिछा होता। नॉट एट ऑल। वो बड़े तटस्थ भाव से वहां रहता है, जैसे कि वो अपनी झोपड़ी में रहता है और इसके बाद वहां से चला जाता है, यानी कि वो माहौल में है लेकिन उसके दिमाग में इससे जुड़ी हुई कोई विचार पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि विचारों पर नियंत्रण करने की आप जब धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे आपका जीवन बेहतर होता चला जा रहा है। तो यहां सीधी सी बात है कि हम अपने आसपास के वातावरण से अप्रभावित तो नहीं रह सकते, हमें उनको जानना ही पड़ता है और जानना भी चाहिए, लेकिन हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख करके अपने अंतर मन को उससे अप्रभावित रख सकते हैं। इस पर आप लोग थोड़ा थोड़ा काम करके देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अब 3 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। कल गुड फ्राइडे है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोरोना कितने जबरदस्त रूप से पसरता चला जा रहा है। बहुत जरूरी है कि आप सब अपना ध्यान रखने, अपने लोगों का ध्यान रखें, और जो भी बातें बताई जा रही हैं सजगता के रूप में, मुझे लगता है कि एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक के रूप में हमें उन सभी का पालन करना चाहिए। 3 दिनों के बाद अब फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, शुभकामनाएं भी स्वीकार करें। नमस्कार।